हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। दूसरा अध्याय चल रहा है। हम कितने श्लोक ले चुके हैं? दो। दूसरे अध्याय के दो श्लोक हमने लिए हैं अब तक। और भगवान का गीत प्रारंभ हो चुका है, भगवान की वाणी शुरू हुई है। पिछले श्लोक में जो हमने पिछले हफ्ते तो नहीं हो पाया, उसके पहले हफ्ते अर्थात दूसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं अर्जुन से, कुतस्त्वा कश्मलमिदम्। कुतस्त्वा, ये कल्मश अर्जुन तुम्हारे अंदर कहां से आए? भगवान आश्चर्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अर्जुन को आर्य मानते थे। आर्य का अर्थ है कि वो मनुष्य जो वैदिक संस्कृति का पालन करता है, जो वैदिक सिद्धांतों का पालन करता है, उसे कहते हैं आर्य। तो भगवान उसी श्लोक में कहते हैं अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन, कि तुम आर्य होते हुए एक आर्य परिवार में पैदा हुए, तुम्हें प्रशिक्षण मिला आर्यता का, परंतु तुम एक अनार्य की तरह क्यों बोल रहे हो? तो भगवान का यह आश्चर्य। और आज का जो श्लोक है इसमें भगवान कुछ और कठोरता से बोल रहे हैं अर्जुन को। काफी स्ट्रॉन्ग ये श्लोक है। इसका अर्थ, क्लैब्यम मास्मगम अपार्थ नैतत्वय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। यहां पर भगवान अर्जुन को दो प्रकार के संबोधन कर रहे हैं, पार्थ और परंतप। कहते हैं हे पार्थ, हे परंतप, ये तुम क्लैब्यम, क्लैब्यम का अर्थ है आजकल की भाषा में नपुंसक। भगवान अर्जुन को नपुंसक बुला रहे हैं। काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं कि हे परंतप, हे पार्थ, क्लैब्यम। और कहते हैं कि ये तुम्हारी हृदय की दुर्बलता है अर्जुन, और इस हृदय की दुर्बलता को त्यागो, गांडीव को नहीं। जो तुमने गांडीव को त्याग दिया है, गांडीव के बदले हृदय दौर्बल्यम को त्यागो। त्यक्त उत्तिष्ट, और उत्तिष्ट का अर्थ है खड़े हो, क्योंकि अर्जुन बैठ चुके हैं। तो भगवान कह रहे हैं उत्तिष्ट, खड़े हो। जैसे कोई टीचर डांटता है ना स्टूडेंट, खड़े हो जाओ, तो वैसे भगवान अब टीचर की भूमिका निभा रहे हैं। गुरु बनने वाले हैं, गुरु हैं, जगत गुरु हैं, तो उनके पास तो पूर्ण अधिकार है किसी को भी उस प्रकार से कहने का। हालांकि यहां पर अर्जुन के साथ जो रिश्ता है वो और भी घनिष्ठ है, सखा, अब तक सखा का रिश्ता चल रहा है दोनों के बीच में। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो दूसरा श्लोक जो हमने पिछले सिटिंग में लिया और आज का श्लोक, इन दोनों श्लोकों का तालमेल क्या है, ये दोनों श्लोक में क्या हम देखते हैं। अर्जुन की बीमारी एवं उसके परिणाम भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि अर्जुन तुम्हारी बीमारी क्या है, ये तुम्हारे कलमश कुतस्त्वा कश्मलमिदम, ये तुम्हारे जो कलमश हैं ये तुम्हारी बीमारी है, और परिणाम क्या है इस बीमारी का कौन बताएगा, भगवान ने क्या परिणाम बताया उस बीमारी का अर्जुन? अकीर्ति, कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी कीर्ति का गान करेंगे लोग, अकीर्ति। तो मानो दूसरे अध्याय दूसरे श्लोक से भगवान ये हमें सिखा रहे हैं कि कलयुग में भी हम देखते हैं लोग अपनी बीमारी को अपना स्वास्थ्य मान रहे हैं। जैसे अर्जुन की बीमारी भगवान ने बताई कि तुम्हारी ये बीमारी है और इसकी ये परिणाम है। तो मान लो कि कोई व्यक्ति रोगी है और वो अपने रोग पर गर्व कर रहा है, तो मूर्खी है, उससे बड़ा मूर्ख और क्या हो सकता, कौन हो सकता है। जैसे कलयुग में जो बुरी आदतें हैं वो भी एक प्रकार का रोग है, मानसिक हृदय का रोग, ऐसा रोग जो शारीरिक रोग से भी ज्यादा घातक, बुरी आदतें, बुरी वासनाएं, चेतना। और कलयुग में आप देखो ये सारी जो बुरी आदतें हैं इसका बहुत गुणगान होता है कलयुग में, इसे कीर्ति मानते हैं लोग। यदि कोई नशा कर रहा है, कोई धूम्रपान करता है, कोई मांसाहार करता है और अलग अलग प्रकार के जो भी शास्त्र के विरुद्ध जो भी कार्य हैं, तो यदि वो कुछ ये सब कर पाए तो अक्सर क्या देखा जाता है कि जो ज्यादा ऐश्वर्यशाली लोग होते हैं वो पाप ज्यादा करते हैं। ये सब नशा करना, धूम्रपान, गलत आदतें, ये सब ऐश्वर्यशाली लोग जिनके पास ज्यादा धन है वो देखा जाता है कि सभी नहीं परंतु अधिकांश देखा जाता है। ये इसलिए क्योंकि इनके पास धन है तो करेंगे क्या उस धन का, कुछ तो कहीं तो लुटाएंगे, तो दिखाना है। कीर्ति कैसे दिखाएंगे दूसरों को, ये जो हम चार नियम पालन करते हैं, चार नियम तोड़कर। बहुत पैसा लगता है चार नियम तोड़ने में। अब मुझे एक व्यक्ति बर्मा में, नया व्यक्ति, वो जब मेरे बारे में सुना और हरे कृष्ण के बारे में सुना, भागवत सप्ताह में आया था, तो पूछने लगा कि आप लोग ये जो सब इतने नियम का पालन करते हो, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी पालन करते हो, तो आपको तो कुछ खर्चा वर्चा तो लगता नहीं होगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सही बात है। तो ये व्यक्ति अंततः काफी कुछ इसने कहा, निष्कर्ष इसके कहने का ये था कि पैसे फिर कमाना क्यों है, यदि ये मौज मस्ती नहीं करनी तो पैसे क्यों कमाएं। तो मैंने कहा इसलिए तो मैं ब्रह्मचारी बन गया। तो देखिए, भगवान ने जो दूसरे श्लोक में अर्जुन की बीमारी, अर्जुन की वास्तविक बीमारी यह नहीं थी कि अर्जुन को कंपन हो रहा था, अर्जुन गांडीव नहीं उठा पा रहे थे, अर्जुन की बीमारी यह भी नहीं थी कि अर्जुन शोक कर रहे थे। भगवान ने उसे भी बीमारी नहीं कहा है। भगवान बीमारी किसे कहे अर्जुन की, कि तुम जिसे कीर्ति मान रहे हो वो तुम्हारी अकीर्ति है, उसे कहते हैं माया। तो उस माया को भगवान बीमारी बोल रहे थे। माया का अर्थ क्या है? माया, वो जो नहीं है, अर्थात जो वस्तु नहीं है उसे होना मान लेना, इसे कहते हैं माया। जैसे उदाहरण श्री प्रभुपाद अक्सर यही देते हैं मृग तृष्णा का, कि आप गर्मी के मौसम में देखो, रेगिस्तान में या सड़क पर भी आपको पानी दिखाई देता है, अंग्रेजी में जिसे मिराज बोलते हैं, मृग तृष्णा, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, सूखा, गर्मी के वजह से और भी ज्यादा वो सड़क सूखी है धूप के वजह से, और उसी धूप के वजह से वहां पर जल दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं माया। बहुत ही सुंदर उदाहरण ये श्रील प्रभुपाद दिया करते थे कि इस कलयुग में जो सबसे ज्यादा वस्तु हमें भूलनी चाहिए, जो वस्तुओं से हमें दूर रहना चाहिए, जिन स्थितियों से, जिन व्यक्तियों से हमें दूर रहना, कोई हमारा संबंध, आत्मा का बिल्कुल संबंध उससे नहीं होना चाहिए, उससे सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध जो स्थापित करता है वो पूर्ण रूपेण माया में, पूर्ण रूपेण शरीर, शुरुआत उसी से होती है। ये आत्मा का इस शरीर से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, परंतु जितना ज्यादा ये आत्मा इस शरीर से अपना संबंध गहरा बनाता जाता है, गहरा बनाता जाता है, उतना ज्यादा वो बीमार अवस्था में है। तो हालांकि ये एक बहुत ही गहरा मुद्दा दूसरे श्लोक से भगवान हम सबको सिखा रहे हैं कि वास्तविक बीमारी क्या है, उसे पहचाने। और अब इस श्लोक में, अच्छा इस श्लोक में भगवान फिर क्या कहे हो? पिछले श्लोक में तो अर्जुन की बीमारी और उसके परिणाम बता दिए, इस श्लोक में आज जो हमने लिया, बीमारी का कारण, बीमारी का कारण बताए। क्या कारण, कौन से वो शब्द हैं जो भगवान इस्तेमाल किए हैं जिसमें बीमारी का कारण बता रहे हैं? हृदय दौर्बल्यम, कि तुम्हारे हृदय की दुर्बलता के वजह से ये जो तुम्हारी स्थिति दिख रहे ना, ये जो तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा, मुरझाया हुआ चेहरा, ये जो तुम बैठे हुए हो, गांडी छोड़ दिए हो, ये सब जो है ना, ये तुम्हारे जो शारीरिक लक्षण है, ये तुम्हारे मानसिक दुर्बलता के कारण है। तो यहां पर भगवान किसकी भूमिका निभा रहे हैं अब ये दो श्लोकों में? एक डॉक्टर की, हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं, एक विशेषज्ञ की, चिकित्सक। तो डॉक्टर क्या करता है? लक्षण देखता है, डायग्नोसिस देता है, और उसके साथ साथ यह भी बताता है कि किन कारणों के वजह से ये लक्षण आए हैं, किन कारणों के वजह से ये बीमारी आपको हुई, और उसके साथ फिर उपचार, वो भी बहुत जरूरी, इलाज। तो भगवान उस विशेषज्ञ के समान अब अर्जुन की ठीक ठीक बीमारी पहचान लिए और बीमारी का कारण पहचान लिए, और इन दो श्लोकों में ये इन दो श्लोकों का संबंध है, अर्जुन की बीमारी, उसके परिणाम, और बीमारी का कारण। आज तो हम आज के श्लोक के कुछ विशेष शब्द लेंगे। भगवान अर्जुन को पार्थ बुलाए हैं, क्लैब्यम एक प्रकार की गाली हुई, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ट, और अंततः अर्जुन को कहते हैं परंतप। तो सबसे पहले यदि हम अर्जुन का ये नाम लें, भगवान सोच समझ के अर्जुन को इस श्लोक में अर्जुन नहीं कहे। देखिए, कभी कोई व्यक्ति होता है, उसके कुछ दो तीन नाम भी होते हैं। एक व्यक्ति को अलग अलग लोग अलग अलग नामों से भी बुला सकते हैं। जैसे हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में भक्त जब दीक्षित होते हैं तो उनको एक नया नाम मिलता है, परंतु फिर जब वो अपने काम पर कहीं पर जाते हैं या कोई फॉर्म वगैरह भरना है तो फिर वो अपना जो लीगल नेम जिसे बोलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट पर जो नाम है वो है वही व्यक्ति। जब मंदिर में आते हैं तो प्रभु जी, और फिर मंदिर के बाहर जाते हैं तो फिर जो भी मिस्टर मिसेज मिस मास्टर जो भी वो सब लग जाता है। यहां पे नहीं लगाते मिस्टर कृष्णदास, ऐसा कोई नहीं लगाता। तो अब अर्जुन के तो कितने नाम, अनगिनत अर्जुन के नाम थे, विशेष प्रमुख नाम अर्जुन के कुछ 10-12 थे, और उनमें से प्रमुख नाम अर्जुन। तो जब हम किसी व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं तो उसका जो प्रमुख नाम है हम उसी से उसे संबोधित करते हैं। अब हो सकता है किसी का नाम पप्पू चिंटू कुछ हो, तो ऐसा नहीं कि हम उसके साथ वार्तालाप करते समय वही नाम बार बार उसे उसका बुलाते रहे। हाँ, घर में उसे कोई उस प्रकार से बुलाता होगा, परंतु बाहर कहीं पे बर्थ सर्टिफिकेट पे पप्पू चिंटू कहां है, नहीं ये सब नहीं। तो अर्जुन का प्रमुख नाम अर्जुन। तो अब भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर से अर्जुन पुकारना चाहिए था ना, तो पार्थ पुकारा। पार्थ का क्या अर्थ है, अर्जुन का ये जो नाम है पार्थ, प्रथा के पुत्र, प्रथा कुंती महारानी, कुंती देवी का नाम प्रथा, तो प्रथा के पुत्र पार्थ। तो यहां पर भगवान ने अर्जुन को पार्थ इसलिए पुकारा दो कारणों की वजह से। अर्जुन को याद दिला रहे हैं, अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा ये जो नाम है ना पार्थ, याद करो, तुम्हारी माता को याद करो जो कि एक क्षत्राणी है। तो भगवान पार्थ नाम के द्वारा अर्जुन को अपनी माता का याद, उनकी माता का याद दिला रहे हैं, कुंती महारानी प्रथा जो कि क्षत्राणी। और कौन सी घटना याद दिला रहे हैं, ये वो घटना जब कुंती महारानी हस्तिनापुर में रह रही थी और भगवान शांतिदूत बनकर आए, जब इनकी ओर से पांडवों की ओर से शांतिदूत बनकर आए तो दुर्योधन ने भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया, हम सब जानते हैं महाभारत की कथा। तो उस समय जब भगवान हस्तिनापुर आए थे तो कुंती महारानी एकांत में भगवान से वार्ता की और कुंती महारानी ने भगवान से कहा कि मेरा एक संदेश जाकर अर्जुन को सुनाना, विशेष रूप से अर्जुन को यह संदेश सुनाना मेरा। कृपा करके आप लोग सब सेलफोन को साइलेंट मोड पे डाल दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। तो कुंती महारानी भगवान से कहती हैं कि अर्जुन को मेरा यह संदेश देना कि अर्जुन तुम्हें पैदा एक क्षत्राणी ने किया है, एक क्षत्राणी ने तुम्हें पैदा किया है और इसलिए तुम अपने जीवन में कभी भी कायरता का काम मत करना, कभी भी कायरता का काम मत करना। और इसके द्वारा कुंती महारानी ये भगवान से कहलवा रही थी अर्जुन के लिए कि तुम ये मत समझो कि युद्ध युद्ध से तुम बच पाओगे, युद्ध तो तुम्हें करना है। क्यों? बाकी कोई भी कारण हो, एक ये कारण है कि तुम मेरे पुत्र हो, एक क्षत्राणी के पुत्र हो, तो क्षत्राणी के पुत्र होने के वजह से तुम्हें युद्ध तो करना ही है। ये समझौता ये सब के पीछे, हालांकि भगवान समझौता कराने आए थे, परंतु भगवान जानते थे कि कुछ नहीं होने वाला समझौता, ये कुत्ते की पूंछ है दुर्योधन, ये नहीं सीधी होने वाली। परंतु फिर भी भगवान अपना कर्तव्य निभा रहे थे। तो कुंती महारानी ये संदेश दी और कुंती महारानी ने कहा भगवान से कि अर्जुन से कहना विशेष रूप से कि जब वो पैदा हुआ था ना, अर्जुन जब पैदा हुआ था तो आकाशवाणी हुई थी कि ये प्रथा पुत्र, ये कुंती पुत्र, ये कौंतेय, ये अर्जुन इतना शूरवीर होगा कि इसके गांडीव के टंकार से लोग रणभूमि पर मलमूत्र त्याग देंगे। यह आकाशवाणी हुई थी, अर्थात उच्च लोक जो ऊंचे लोक हैं, स्वर्ग लोग, वहां की ये वाणी। ये कोई ऑल इंडिया रेडियो नहीं, वो आकाशवाणी नहीं। तो इसलिए भगवान अब अर्जुन को पार्थ पुकार रहे हैं और भगवान ने यह संदेश अर्जुन को जाके सुनाया तुरंत कि तुम्हारी माता का यह संदेश है। तो भगवान अब बुला रहे हैं, पार्थ याद है तुम्हारी माता ने यह संदेश तुम्हें मेरे हाथों भिजवाया था, भूल गए वो संदेश? अरे और किसी के नहीं लिए तो अपने मां के लिए तो युद्ध करो। हालांकि उसमें बहुत कुछ माता कुंती ने कहा था, माता कुंती ने कहा था कि अर्जुन तुम सबको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी एक पत्नी दुशासन ने ऐसा दुर्व्यवहार किया द्रौपदी के साथ और तुम लोग चुप बैठ गए। अरे तुम लोगों ने मेरा दूध पिया है और मुझे एक क्षत्राणी को तुम इस प्रकार से बदनाम कर रहे हो। तो ललकार रही थी अर्जुन को, भीम को, विशेष रूप से अर्जुन और भीम को इस प्रकार से कुंती महारानी ने ललकारा, क्योंकि जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज वो थोड़े ज्यादा सत्वगुण में। अब द्रोणाचार्य की भी एक घटना भगवान अर्जुन को याद दिला रहे थे कि जब गुरुकुल का प्रशिक्षण संपन्न हुआ, धनुर्विद्या अर्जुन ने सीख ली, तो धनुर्विद्या सीखने के बाद द्रोणाचार्य ने विशेष अर्जुन से एक गुरु दक्षिणा मांगी। हालांकि बाकी सभी गुरु दक्षिणा दिए अपनी अपनी ओर से, परंतु अर्जुन से द्रोणाचार्य ने विशेष गुरु दक्षिणा मांगी बोलकर कि ये गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए, क्योंकि बहुत स्वाभाविक घनिष्ठ प्रेम था द्रोणाचार्य का अर्जुन के प्रति, फेवरेट स्टूडेंट। कौन सी गुरु दक्षिणा मांगी? नहीं, वो तो खैर थी, वो तो एक गुरु दक्षिणा थी, परंतु एक बहुत ही पर्सनल गुरु दक्षिणा अर्जुन से द्रोणाचार्य ने यह मांगी कि अर्जुन जब कभी भी युद्ध में मैं तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हूं, तुम्हारे हाथ कांपने नहीं चाहिए मुझे मारने के लिए। तुम्हारे अंदर कायरता नहीं आनी चाहिए कि अरे मेरे गुरु को मैं कैसे मारूं। तुम यदि मेरे शिष्य हो और तुम्हें यदि सर्टिफिकेट चाहिए, ये गुरु दक्षिणा पहले दो, तो अर्जुन ने ये प्रण, ये गुरु दक्षिणा द्रोणाचार्य को उस समय दी थी कि हां यदि आप गुरुदेव मेरे सामने खड़े विपक्ष में युद्ध करने के लिए, मुझे मारने के लिए, परंतु मेरे हाथ कांपेंगे नहीं आप पर प्रहार करने पर। तो भगवान ये सब पूरा पिछला रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, कहां गए तुम्हारे ये सारे प्रण, तुम धर्म की बात बोल रहे हो, अरे तुमने इतने सारे जो वचन लिए, तुम्हारी माता ने जो तुमसे वचन लिए, तुम्हारे गुरु ने, वही सामने खड़े हैं, पूछो जाके जो गुरु दक्षिणा तुमने उनको दी थी वो कहां गई गुरु दक्षिणा। तो इसलिए हाँ ये पार्थ का संबंध उसका इसलिए है कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को उस समय पार्थ बुलाया। जब ये गुरु दक्षिणा मांगी तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, पार्थ तुम प्रिथा के पुत्र हो, तुम एक क्षत्राणी के पुत्र हो, और ये गुरु दक्षिणा यदि तुम मुझे नहीं दे सकते तो तुम मेरे काबिल शिष्य नहीं। तो स्वयं प्रिथा ने और द्रोणाचार्य ने अर्जुन को उस नाम से पुकारते हुए ये प्रण ले लिया या याद दिलाया अर्जुन की शूरवीरता का। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं क्लैब्यम मास्म गम पार्थ। तो अर्जुन ने जैसे ही पार्थ सुना तो अर्जुन को सब याद आने लगा कि हाँ। इसलिए देखिए भगवद गीता बहुत रिफाइंड है, इसमें हम अभी स्टोरी बता रहे हैं, भगवान ऐसे बीच में रुक के स्टोरी और ही नहीं बताया कि याद है उधर उस टाइम क्या हुआ था, वो बस पार्थ बोलते ही पार्थ समझ गए कि क्यों मुझे पार्थ बुलाया, परंतप उसमें भी समझ गए क्यों मुझे परंतप। तो एक दृष्टिकोण से जैसे कई बार कोई किसी को सरकास्टिकली या व्यंग्यात्मक दृष्टि से बोलता है, जैसे कई बार कोई बच्चा यदि कुछ उपद्रव कर दे, गिर जाए और कुछ तोड़ दे, तो माता बोलती है वाह बहादुर। तो उसका अर्थ क्या है, वो ऐसा नहीं कि बहुत बहादुरी उसने दिखाई, वो समझ जाता है बहादुर, वो बहादुर क्यों बुलाया उसे। अब अगला शब्द क्लैब्यम। क्लैब्यम के दो अर्थ हैं, एक तो सीधा अर्थ नपुंसकता, और यहां पर भगवान इसके पीछे भी अर्जुन को याद दिला रहे हैं, बहुत ही एक विशेष घटना याद दिला रहे हैं। विशेष घटना यह याद दिला रहे हैं कि अर्जुन तुम जब गए थे इंद्र लोक और उर्वशी ने जो तुम्हें शाप दिया था कि तुम नपुंसक बन जाओ, और अर्जुन नपुंसक बन गए एक साल के लिए। सोचिए इतना बड़ा क्षत्रिय को बहुत बहुत बड़ा श्राप है, मार डालना क्षत्रिय को वो क्षत्रिय की कीर्ति है, हरा देना क्षत्रिय को वो भी इतना घातक नहीं, परंतु एक क्षत्रिय को नपुंसक बना देना, वो भी अर्जुन, अर्जुन जैसे क्षत्रिय वर्ल्ड नंबर वन। तो अर्जुन को एक साल के लिए उर्वशी ने, और किसने, उर्वशी ने, एक नाचने गाने वाली स्वर्ग की उसने नपुंसक बन जाओ, और वो भी अर्जुन की गलती नहीं, बिना किसी गलती के, अर्जुन ने तो अपना संयम दिखाया था। हालांकि बाकियों ने बहुत गुणगान किया, सभी आके गुणगान किए, लेकिन किसी ने भी उर्वशी को दो तीन लगाया नहीं, तो क्या क्या बोल दिया है तुमने। इंद्र बाकी सारे जितने देवता वो आके पुष्पों की वर्षा अर्जुन के ऊपर, अर्जुन तुम्हारे जैसा संयमी हम तो पागल ही उर्वशी के पीछे, और ये कभी घास ही नहीं डालती हमें, और ये तुम्हारे पीछे। तो वो अर्जुन के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, परंतु किसी ने भी ये नहीं उर्वशी से, तुम श्राप पीछे लो पहले, एक साल के लिए क्या कर दिया तुमने, क्योंकि वो डरते थे कि उर्वशी को कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो ये अर्जुन तो जाने वाला है, अब हमको तो उर्वशी के साथ रहना है। तो वास्तविक रूप में, शारीरिक रूप से अर्जुन नपुंसक बने 1 साल के लिए ब्रहन नला के रूप में। हालांकि वो एक वरदान में परिणित हुआ आगे चलकर, हम जानते हैं उसे। परंतु उस 1 साल में अर्जुन विराट राजा के नगर में रह रहे थे, और विराट का जो पुत्र उत्तर कुमार, थोड़ी लंबी कथा है ये, जब सारे कौरव आए, भीष्म, द्रोण, कृपा, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये सभी जानते थे कि ये पांडव यहीं पर हैं, अज्ञातवास इनका यहां पर चल रहा है, तो पहचानने के लिए और मारने के लिए पूरी कुरु सेना आई, और अकेले अकेले अर्जुन ने नहीं, बृहन्नला, अकेले बृहन्नला ने पूरी कुरु सेना को परास्त किया। मुंह झुकाए, मुंह लटकाए, ये सारे भीष्म, कर्ण, द्रोण, ये सारे लौट गए हार कर अकेले। तो यहां पर भगवान देखिए, क्लैब्यम अर्जुन को कहते हैं नपुंसक, एक समय तुम थे और उस समय तुम जीते थे इन्हीं के विरुद्ध, और अब तुम अर्जुन हो परंतु नपुंसकता का कार्य कर रहे हो। जब नपुंसक थे तब अर्जुन का कार्य किए, अब अर्जुन हो बाहर से, अंदर से नपुंसक, पहले बाहर से नपुंसक, अंदर से अर्जुन, अब बाहर से अर्जुन हो और अंदर से क्लैब्यम। कायरता, हालांकि भगवान बता रहे हैं कि ये जो तुम जिसे इतनी उदारता मानते हो कि मैं क्षमा कर रहा हूं दुर्योधन को, उसने जो भी गलतियां की सारी गलतियां माफ, उसके सारे खून माफ, और ये सब कुछ ऐसे ही मैं पूरा राज्य इनको देने के लिए तैयार हूं, मैं भीख मांगने के लिए तैयार। ये तुम अपनी बड़े बड़े शब्द बोल रहे हो ना धर्म के, उदारता के, भगवान कहते हैं कायरता है, ये तुम्हारी नपुंसकता है। तो काफी भगवद गीता की शुरुआत काफी कठोर शब्दों से हो रही है। तो भगवान विशेष रूप से अर्जुन को याद दिला रहे हैं, ये याद दिला रहे हैं कि अर्जुन आगे कहेंगे हृदय दौर्बल्य, ये जो तुम्हारे अंदर की नपुंसकता है इसको दूर करो, जिसके वजह से तुम उठ नहीं पा रहे, गांडीव नहीं उठा पा रहे। तो अर्जुन को वो 1 साल अर्जुन का याद दिला रहे हैं भगवान, क्लैब्यम पुकार कर। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, आगे भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारी बीमारी का कारण मैं बताता हूं, ये वायरस है किधर, तुम्हारी बीमारी का वायरस कहां है, कारण बता रहे हैं हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता, और कुछ नहीं है। ये नहीं कि अचानक तुम्हें कुछ बुखार हो गया, या कल ठीक से खाया नहीं था, या सोए नहीं थे, नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये तुम्हारे अंदर की बीमारी है, हृदय की दुर्बलता है, जिसके वजह से तुम्हारा शरीर दुर्बल दिख रहा है बाहर से। और वो दुर्बलता कैसी है, क्षुद्रम, तुच्छ। देखिए क्षुद्रम का अर्थ होता है तुच्छ, क्षुद्र का अर्थ होता है तुच्छ। श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट किए हैं पेटी वीकनेस, होता है पेटी कैश, तो पेटी वीकनेस बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद। अब इसका अर्थ क्या है कि ये जो अर्जुन की दुर्बलता है, ये दुर्बलता बहुत तुच्छ है, परंतु इसके परिणाम तुच्छ नहीं है। परिणाम तुच्छ नहीं है। जैसे कि इंद्रिय भोग इस भौतिक संसार का तुच्छ, उसके परिणाम तुच्छ नहीं है। लेकिन तो अक्सर लोग या भौतिकतावादी मनुष्य इस कलयुग में, इस भौतिक संसार में किस भ्रम में रहता है, अरे मेरा इंद्रिय भोग भी तो तुच्छ है ना, मैं तुच्छ हूं, मैं तो क्या 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर हूं, मैं तुच्छ हूं, ये भौतिक संसार तुच्छ है और मेरा इंद्रिय भोग इसके अंदर तो कितना तुच्छ होगा फिर। हां ये सब कुछ तुच्छ है, परंतु जो इसका परिणाम निकलता है, इस तुच्छ इंद्रिय भोग का परिणाम महतो भयात, इसी इसी अध्याय का वो श्लोक है, त्रायते महतो भयात, महान भय में डाल देता है वो तुच्छ इंद्रिय भोग। तो मानो भगवान यहां पर अर्जुन को यह बता रहे हैं कि अर्जुन तुम थोड़ी बुद्धि लगाओ, कि एक है तुम्हें कुछ तुच्छ वस्तु खरीदनी है और उस तुच्छ वस्तु को खरीदने के लिए तुम्हें इतना इतनी महान रकम देनी पड़ेगी। तो यहां पर क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम के द्वारा भगवान अर्जुन को यह सिखा रहे हैं, कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। अर्थात अर्जुन तो क्षत्रिय है, परंतु क्षत्रिय अर्जुन को भगवान एक वैश्य का कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। वैश्य जानते हैं आप, बिजनेसमैन। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अब भगवान कौन से कुल में, भगवान कौन से कुल में आए, वैश्य। बहुत लोग बोलते हैं हम भी हैं यादव, हमारे सरनेम यादव है। एक हमें व्यक्ति बता रहे थे कि 5000 वर्ष पूर्व यादव परिवार में एक लाला पैदा हुआ। कौन? नंद लाला, नंद का लाला। और 5000 वर्ष के बाद एक यादव कुल में लालू पैदा हुआ। तो ये यादव कुल के बहुत गर्व से कहते हैं कि अरे वो तो केवल माखन मिश्री में, हम तो राबड़ी के साथ, हम तो राबड़ी के साथ खेलते हैं। तो भगवान वैश्य कुल में अवतरित हुए, इसलिए भगवान अपनी अपने वैश्य गुणों को यहां पर प्रदर्शित करके अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन ये जो तुम्हारी दुर्बलता बहुत शूद्र दिख रही होगी तुम्हें, लेकिन तुम जानते नहीं कि तुम ये जो बैठ गए हो ना युद्ध नहीं करने वाले, जो बोल दिया तुमने, तुमने ये नोटिस पास कर दिया नहीं करने वाला युद्ध, इसका परिणाम नहीं जानते तुम क्या होगा, युद्ध नहीं करने का परिणाम। तो इससे भगवान अर्जुन और अर्जुन के द्वारा हम सबको यह बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन में ऐसा नहीं कि किसी ने पाप नहीं किया तो उसे कोई परिणाम नहीं मिलने वाला। इस मनुष्य समाज में कोई व्यक्ति यदि उसका कर्तव्य जो उसे करना है वो नहीं करेगा तो भी परिणाम मिलेगा उसे। अर्जुन, अर्जुन का कर्तव्य है कि युद्ध करे खड़े होकर, और युद्ध नहीं करने के वजह से भगवान कहते हैं वो पाप है। जैसे इसका उदाहरण हमने पहले भी दिया कि कहीं पर मारामारी चल रही है और पुलिस खड़ा है तो ये पुलिस का पाप है, अरे उधर मारामारी चल रही तो तुम क्यों हो वर्दी में। तो पुलिस का कर्तव्य है कि उसको रोके, तो कुछ नहीं करने से भी अधर्म हो सकता है। देखिए, एक है कुछ गलत करने से अधर्म होता है और एक है सही नहीं करने से भी अधर्म होता है। समझ में आ रहा है आपको? कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो इसलिए भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन के द्वारा हम सबको कि मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, ये मनुष्य देह जो हमें मिला है, इस मनुष्य देह में जब तक हम इस मनुष्य देह का उद्देश्य, उसका कर्तव्य पूरा नहीं करते, तो हमें पाप का भागीदार होना होगा। चाहे हम जाने में या अनजाने में या कितना भी प्रयास करें पुण्यात्मा बनने का, जब तक हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने की चेष्टा नहीं कर रहे, शुद्ध भगवत भक्ति नहीं कर रहे, तब तक वो अधर्म की श्रेणी में ही कहलाया जाएगा। ये भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारे हृदय की दुर्बलता, इसके परिणाम क्षुद्रम नहीं होने वाले, महान महतो भयात इसके परिणाम होंगे। और फिर इसके साथ भगवान ने जो क्लैब्यम, जो पिछला शब्द हमने लिया इस श्लोक का, तो विशेष रूप से भगवान अब अर्जुन की बाहरी नपुंसकता जो 1 साल की थी उसे नहीं बता रहे, जिसकी चर्चा हमने की। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो तुम्हारे अंदर जो नपुंसकता आई है, जो हृदय की दुर्बलता आई है, वो एक प्रकार का रोग है तुम्हारा, हृदय का रोग है तुम्हारा। इसलिए हमने शुरुआत में ही इस श्लोक और पिछले श्लोक को किस तरीके से समझा कि भगवान एक डॉक्टर की भूमिका मानो निभा रहे हैं और अर्जुन एक रोगी। तो इसलिए जैसे रोगी का एक प्रमुख लक्षण होता है दुर्बलता, है ना, चाहे कोई भी रोग हो, वीकनेस, दुर्बलता एक लक्षण हो, चाहे बुखार हो, सर्दी खांसी, जो भी इन्फेक्शन हो, दुर्बलता आ जाती है, वीकनेस आती है। तो फिर यहां पर भगवान जो एक विशेषज्ञ की भूमिका निभा रहे हैं और अर्जुन को एक बीमार रोगी व्यक्ति बोल रहे हैं, तो दुर्बलता अर्जुन की दिखाकर कहते हैं। अब ये हृदय की दुर्बलता से क्या समझ में आता है कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुम केवल स्थूल स्तर पर सोच रहे हो। तुमने देखा, किसे देखा, भीष्म, द्रोण, कृपा, इनको देखा और अब तुम्हारे अंदर ये सारी विकार उत्पन्न हो रहे हैं। ये एक बहुत ही पशुवत दृष्टिकोण होता है कि स्थूल स्तर पर किसी वस्तु को देख जाना और उससे प्रभावित हो जाना। जैसे जानवर, एक पशु जो है वो अपने इंद्रियों से जो कुछ देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है अपने पांचों इंद्रियों से, तुरंत वो प्रभावित हो जाता है। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि ये नहीं कि तुमने उनको देखा, भीष्म और द्रोण को, क्योंकि सेनोर उभय और मध्य, रथ कहां स्थापित किया है, इन दोनों के मध्य में, जानबूझ के देखो। भगवान तो ये सोच रहे थे कि अर्जुन देखने के बाद और ज्यादा क्रोधित होंगे कि ये लोग मारने आ रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं इन्हें मैं, ये तो उल्टा हो गया। इसलिए भगवान आश्चर्य किए कि अरे मैं तो रथ बीच में लाया कि तुम्हारे अंदर ये दुर्योधन और भीष्म द्रोण के प्रति थोड़ा और कुछ शत्रु भाव उत्पन्न होगा, ये तो मित्र भाव उत्पन्न कर रहे। तो भगवान ये सिखा रहे हैं कि मन और शरीर इनमें शक्तिशाली कौन है। मन शक्तिशाली, हालांकि किसी को भी वो मन दिखाई नहीं देता, किसी को भी वो दिखाई नहीं देता है, कोई उसको स्पर्श नहीं कर सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, कोई किसी को दिखा नहीं सकता, ये देखो मेरा मन, ये इसको मैंने फेंका, भगवान इसके द्वारा ये हम सबको सिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति जो वस्तु जितनी ज्यादा सूक्ष्म होती है उतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है। जैसे ये एटम बॉम्ब, जितना ज्यादा ये अभी ये दिवाली के बम हैं, ये सब बहुत स्थूल हैं, और भी कोई बम होते हैं बहुत स्थूल होते हैं, जितना ज्यादा उसकी टेक्नोलॉजी सूक्ष्म होती जाती है उतना वो शक्तिशाली। सबसे ज्यादा शक्तिशाली बम कौन सा है? एटम बम। और एटम आज तक किसी ने देखा नहीं। ये मन भी एटम बम के समान है, किसी ने देखा नहीं, सबको फोड़ रहा है यहां वहां, कोई आज तक पकड़ नहीं पाए इसे, कोई देख नहीं पाए, परंतु सब फूट रहे हैं इस एटम बम की वजह से, अंदर सबके फिट हुआ है। तो विज्ञान में भी साइंस में भी आप देखिए, जितना टेक्नोलॉजी सटल जिसे कहते हैं सूक्ष्म होता जाता है उतना शक्तिशाली होता जाता है। इसलिए यहां पर भगवान अर्जुन को यह याद दिला रहे हैं कि अर्जुन तुम ये जो रोना धोना कर रहे हो, बैठ गए ये सब, तुम्हारे अंदर कंपन और ये सब कुछ छोड़ दिया तुमने गांडीव, मैं बताता हूं कि ये सब का प्लग पॉइंट किधर है, कहां से प्लग निकल चुका है, वो अंदर तुम्हारे वो सब सप्लाई वहां से छूट चुका है और गलत हो रहा है सब कुछ, गलत सप्लाई जा रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अब इसमें ये हमें समझना है कि पूरी भगवद गीता भगवान ने जो अर्जुन को सुनाई वो केवल भगवान अर्जुन का जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर भगवान ने मरम पट्टी की, मन मन के ऊपर। इसलिए हम भी जब भगवद गीता सुनते हैं तो भगवद गीता, हां कई लोग भगवद गीता अपने शरीर के यापन के लिए इस्तेमाल करते हैं, गीता का प्रवचन, गीता को प्रिंट कर करके बांटना, उसमें से पैसे मिले तो शरीर चल रहा है, शरीर ये गाड़ी चल रही, ये रथ चल रहा है। परंतु भगवद गीता वास्तविक रूप में भगवान ने सुनाई ये शारीरिक जो स्थूल हमारा शरीर है उसके लिए नहीं, सूक्ष्म, हमारा सूक्ष्म शरीर कैसे स्वस्थ बने, निरोगी बने, उसके लिए भगवद गीता सुनाई गई। इसलिए इसके साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि कलयुग में, विशेष रूप से कलयुग में, ये जो मानसिक बीमारी है ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, घातक मानसिक बीमारी। इसलिए लोग बोलते भी हैं नंबर वन एनिमी और द डिजीज ऑफ द 21st century इज स्ट्रेस। कोई इसका कोई डिटेक्टर नहीं है जो दिखाता है कि हाँ कोलेस्ट्रॉल दिखा देगा, इतना कोलेस्ट्रॉल, इतना ब्लड प्रेशर है, सबके उपकरण है, ये नहीं दिखाए कितना स्ट्रेस इसके अंदर है। तो फिर और उसके वजह से कितने लोग मर रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं, दोनों, ये मानसिक बीमारी की वजह से। इसलिए भगवद गीता जब शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए, भगवान सिखा रहे हैं कि हम सब की हृदय की दुर्बलता दूर करने के लिए गीता सुनाई गई है। अब यहां पर बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण देखिए भगवान का और एक जीव का। अर्जुन जीव की भूमिका निभा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण अपना दृष्टिकोण सुनाते हैं। तो बद्ध जीव का दृष्टिकोण क्या है, अर्जुन का दृष्टिकोण पहले अध्याय में, पहले अध्याय में अर्जुन का दृष्टिकोण, अर्जुन इतने उदार बन रहे थे। तो बद्ध जीव यदि केवल पहला अध्याय अर्जुन का सुनेगा तो इतना गुणगान करेगा अर्जुन का कि इससे ज्यादा उदार व्यक्ति कौन हो सकता है। अरे जिस दुर्योधन ने, जिस दुशासन ने अर्जुन की पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, बचपन से इन्हें मारने की साजिश करते गए, ऐसे लोगों के प्रति अर्जुन की ऐसी कृपा भावना, इससे ज्यादा उदार कौन हो सकता है अर्जुन से ज्यादा। परंतु भगवान उसी उदारता को क्या बोलते हैं? क्लैब्यम, कायरता। अर्जुन, ये तुम्हारी उदारता नहीं, ये तुम्हारी कायरता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? यह समझ में आ रहा है कि हमें शास्त्र की जो वाणी है, कितना जोर उसके ऊपर देना चाहिए। क्योंकि हमारा दृष्टिकोण, हाँ, जैसे अर्जुन का दृष्टिकोण, हमारा दृष्टिकोण हमें लग रहा होगा कि हाँ, कई लोग बोलते हैं ना, अरे भाई अपना कर्म करो और जियो, जीने दो बस, ये उनका धर्म है। कितने लोग बोलते हैं ना, ये उनका शास्त्र, खुद ही लिख लेते हैं अपना शास्त्र, अपनी गीता, और बहुत घमंड से, गर्व से कहते हैं कि मेरे जीवन का फिलॉसफी है ये सब पूजा वूजा, ये सब ढोंग है, सब दिखावा, मंदिर जाना, ये सब मूर्तियों के सामने माथा टेकना, ये सब ढोंग है, बस अपना कर्म करो और अपने कर्म के बलबूते पर, हाँ, किसी को कुछ हानि मत पहुंचाओ, जियो जीने दो, ये है हमारा फिलॉसफी। लेकिन हम सोचते होंगे, और बहुत लोग फिर बोलेंगे, वाह वाह, हम भी आपके क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं। कौन से क्लब को? जियो जीने दो, अपना कर्म करो, ये वो। अरे तो उसको जीने दो ना, उसको क्यों ज्वाइन कर रहे फिर? तुम भी जियो, उसको भी जीने दो। परंतु शास्त्र का दृष्टिकोण कई बार एकदम विपरीत रहता है हमारे बद्ध दृष्टिकोण की तुलना में। एक बद्ध जीवात्मा के का जो दृष्टिकोण है, उसकी तुलना में शास्त्र का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग, विपरीत। यहां पर विपरीत हो रहा है, उदारता को कायरता बोली जा रही है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भी, जब हमारे इस मनुष्य जीवन में किसी धर्म का पालन करना चाहते हैं, नैतिकता का पालन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि ये क्या भगवान की वाणी है? क्या ये शास्त्र की वाणी है, वेद वाक्य जिसे बोलते हैं? इसलिए हर समय श्रील प्रभुपाद, देखिए उनके तात्पर्यों में, उन्होंने इस उपनिषद से, इस पुराण से कोट कर, ऐसा नहीं कि ये मेरे अनुसार ऐसा नहीं, कठ उपनिषद, श्वेत श्वतार उपनिषद, मुंडक उपनिषद, गरुड़ पुराण, ये पुराण, वो पुराण, ये सब शास्त्र कहते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। शास्त्र कहते हैं इसलिए हम शरीर नहीं, आत्मा है। इसे कहते हैं प्रामाणिकता, और यही भगवान ये शुरुआत में ही हमें सिखा रहे हैं कि भगवान का दृष्टिकोण जानना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने वो डेफिनेशन दिया कृष्ण कॉन्शियसनेस का, टू सी दिस वर्ल्ड थ्रू द आईज ऑफ कृष्ण, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान श्री कृष्ण के नजरों से इस भौतिक संसार को देखना, इसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत। अच्छा, जब हमने ये तुलना की है कि भगवान एक विशेषज्ञ हैं, तो प्रथम अध्याय अर्जुन का हृदय रोग, और बाकी 17 अध्याय औषधि। तो देखिए औषधि की मात्रा कितनी है, 17 अध्याय भगवान अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां घोल घोल के अर्जुन को पिलाए। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे यह समझ में आ रहा है कि हां, हमारी बीमारी इस भौतिक संसार में, हम भगवान को छोड़ के आए, भगवान को भूले, यहां आकर हम भोग विलास कर रहे हैं, और वो भी कैसा भोग विलास? क्षुद्रम, फिर से भौतिक संसार क्षुद्र, हमारा भोग विलास क्षुद्र। परंतु भगवान की कृपा देखिए कि हमारी उस बीमारी को ठीक करने के लिए भगवान कितने सारे प्रयोजन किए। अर्थात देखिए 17 अध्याय भगवान ने सुनाया अर्जुन को, वो एक अध्याय जो अर्जुन ने भगवान को सुनाया उसके बदले में तो अर्जुन ने एक अध्याय सुनाया, भगवान ने आप मैं तुमको 17 सुनाऊंगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 17। इसलिए ये 17 अध्याय का अर्थ क्या है, भगवान की कृपा कंजूसी में नहीं देते भगवान। ये 17 अध्याय का अर्थ क्या है, इसे कहते उदारता। अर्जुन सोच रहे थे मेरा पहला अध्याय बहुत उदार है, उदारता ये 17 अध्याय। तो इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान यदि हमारा उद्धार करना चाहते हैं, वो तो चाहते ही हैं, तो भगवान हालांकि वैश्य परिवार में आए लेकिन भगवान उस प्रकार के वैश्य नहीं जो हम लोग सोचते हैं, हालांकि भगवान तो वर्णाश्रम के परे हैं। तो भगवान की कृपा इससे यह समझ में आ रहा है कि बद्ध जीव की बीमारी और भगवान की औषधि, इनकी तुलना देखिए। परंतु हम देखिए फिर भी इतनी औषधि, इतने इतने अध्याय, 17 अध्याय, इतना सब कुछ देने के बाद भी हम फिर से उसी गटर में जाते हैं, उसी वायरस को अंदर लेते हैं। अच्छा, भगवान ने ये अब औषधि पिलाई कैसे, ये ऐसी औषधि है जो यहां से या सलाइन वलाइन लगा के नहीं ले सकते, ये कर्ण इंद्रिय, कर्णेन्द्रिय के द्वारा ही यहां से डोज जा सकता है ये अंदर, और कहीं से नहीं। तो अलग अलग जो औषधि होती है उसका डोज अलग अलग तरीके से दिया जाता है ना। जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन को शरीर में वो रोपा जाता है कहीं से, किसी नली से, यहां वहां। और गोलियां होती हैं वो खाई जाती हैं, अलग अलग तरीके से औषधि दी जाती है, कई औषधियों कई ऊपर केवल लेप लगाया जाता है उसका, कई औषधि केवल सुंघाई जाती है, ऐसी भी औषधियां हैं केवल सुंघाई जाती है। जैसे वो मेडिकल इंडस्ट्री में है प्लसीबो इफेक्ट, उसमें केवल औषधि के बारे में गुणगान किया जाता है, उससे ठीक हो जाता है वो आदमी, ये ऐसी 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 उसे ठीक हो जाता है। तो ये जो औषधि है ये ऐसी औषधि है, एनएचई औषधि माया, कौन सा है वो भजन, हाँ चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं ऐसी औषधि लेकर आए हैं, ये हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मां की, एनएचई औषधि माया नासी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। भक्तिवरण ठाकुर का यह भजन जीव जागो इस भजन में कि चैतन्य महाप्रभु ऐसी औषधि लाए हैं कि इस औषधि का कोई एक बार भी पान कर ले, और इतनी मधुर है, कई बार औषधियां मधुर नहीं होती, बहुत कड़वी भी होती, परंतु ये इतनी मधुर औषधि चैतन्य महाप्रभु लाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कानों के द्वारा इस औषधि को हमारे हृदय में वहां तक पहुंचाना है, और वहां पर सब पूरे सारी बीमारी का हेडक्वार्टर उधर ही है, किधर, हृदय में, उधर से सब ब्रांचेस खोल के रखे हैं, और हार्ट ने सब ब्रांचेस खोल के रखा, तो वहां जाता है औषधि, वहां पहुंचती है हृदय में। इसलिए इसे हम यही तुलना दे रहे हैं कि एक तो जब भी कोई व्यक्ति औषधि लेता है तो उसे पता होना चाहिए कि उसका डोज कितना लेना है, न तो कम न तो ज्यादा, डोज कितना लेना चाहिए उसका, कौन से समय पर डोज लेना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। और क्या, औषधि लेते समय और क्या क्या ध्यान में हम रखते हैं? पथ्य, पथ्य का पालन बहुत जरूरी है ना, नहीं तो ले जा रहे हैं किलो के भाव पे औषधि, और फिर बाकी जो डॉक्टर ने कहा कि अरे वो बाकी पथ्य का पालन करो, वो लिखा जाता ना, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन पे लिखा जाता कि ये पथ्य का पालन करो। तो डायबिटीज है और खाए जा रहे चीनी पे चीनी पे चीनी, और उसके साथ साथ मेडिसिन भी चल रहा है, तो बेचारी औषधि के क्या है दोष अभी, वो औषधि भी थक थक के भी भाड़ में, खाओ भी जो खाना है मुझे भी थोड़ा दो। तो देखिए औषधि के साथ अलग अलग प्रकार के नियम है उस औषधि को व्यक्ति के ऊपर असर लाने के लिए, इफेक्ट उसका लाने के लिए। तो वैसे ही ये भगवत गीता जो औषधि के रूप में हम भगवान सुनाए हैं, तो ऐसा नहीं कि बस केवल भगवत गीता सुन लिया हो गया, पढ़ ली भगवत गीता, कंठस्थ भी कर ली, परंतु उसके साथ हमने जीवन में और क्या क्या पथ्य का पालन किया, तब जाकर यह औषधि असर करेगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने केवल ये नहीं कहा कि हरि नाम करो हरि नाम करो, चार नियम उसके साथ चार नियम भी दिए, तब जाकर वो हरि नाम वो बीमारी को ठीक कर रहा है, कुछ कुछ हद तक ठीक कर रहा है। अब भगवान ने आगे अर्जुन को कहा, त्यक्तोत्तिष्ट परंतप, त्यक्तो उत्तिष्ट, उठो। अब उठने का अर्थ क्या है? उठने का अर्थ केवल खड़े नहीं हो जाना, बस ऐसा नहीं कि अर्जुन खड़े हो गए, हाँ बोलो बोलो अभी बोलो। तो कई बार हम एकदम लिटरली ग्रॉस तरीके से समझते हैं उत्तिष्ट मतलब खड़े हो जाओ, अरे केवल खड़े होने से वो युद्ध नहीं करने वाले, जागृत। इसलिए हमारे उपनिषद में कहा गया है जीव के लिए उत्तिष्ट उत्तिष्ट जागृत, कि हे सारे जीव आप लोग जो सब सोए हुए हो, भगवान बोल रहे हैं कि आप लोग जो सब सोए हुए हैं, जीव जागो जीव उत्तिष्ट, आप लोग उठिए। उठने का अर्थ ये नहीं कि अलार्म लगाकर नींद से उठिए, कौन सी नींद बता रहे हैं, माया, माया की गोद में, माया की गोद में जो हम सब सोए हुए हैं, तो माया की गोद से हम उठें, अर्थात आध्यात्मिक रूप से जो हम सोए हुए हैं तो हम जागृत हों। तो यहां पर उत्तिष्ट का अर्थ शारीरिक रूप से भी है, सूक्ष्म रूप से भी है। बहुत और गीता में भगवान बहुत बीच बीच में बार बार बोले तो तुम खड़े तो हो, उत्तिष्ट बहुत बार बोले हैं। इसका अर्थ भगवान अंदर से अर्जुन को जागृत कराना चाहते हैं, क्योंकि अब ये बीमारी अंदर की है, ये बीमारी अंदर की है, इसलिए अंदर से भगवान जागृत कराना चाहते हैं, इसलिए उत्तिष्ट बोल रहे हैं। और फिर परंतप, परंतप के दो अर्थ यहां पर हैं, शत्रुओं को तपाने वाला, उत्कृष्ट तपस्या करने वाला, इसे कहते हैं परंतप, परम तपस्या जो करने वाला है, अर्थात परम का अर्थ उत्कृष्ट भी हुआ और पर का अर्थ होता है दूसरा व्यक्ति, तो दूसरे व्यक्ति को तपाने वाला अर्थात शत्रुओं को तपाने वाला उसे कहते हैं परंतप, और बहुत कठोर तपस्या जो कर सके उसे भी कहते हैं परंतप। तो अर्जुन को यहां पर भगवान परंतप बुला रहे हैं कि तुम पार्थ हो, तुम एक क्षत्राणी के पुत्र हो, तुम द्रोणाचार्य के शिष्य हो और तुम्हें ये ख्याति मिली है अर्जुन, कौन सी ख्याति, परंतप की ख्याति तुम्हें मिली है अर्जुन, और तुम ये क्या तुम्हारा हाल बना रखा है, भगवद गीता लेते क्यों नहीं? अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्जुन को यह जो ख्याति मिली, शत्रुओं को तपाने वाला यह अर्जुन, जैसे देखिए सूर्य, सूर्य तपाता है ना, गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं कि सूर्य कितना तपाता है हम सबको, इतना कि हम अंदर बैठे हैं फिर भी तप रहे हैं, इतनी सूर्य की अग्नि तेज होती है। तो अर्जुन के विषय में बताया गया है कि अर्जुन युद्ध भूमि में सूर्य के समान शत्रुओं को तपाते थे, शत्रु अर्जुन को देखकर, केवल अर्जुन का नाम सुनकर शत्रु थरथर कांपते थे। यहां पर तो हम केवल अर्जुन को ऐसे देख रहे हैं, हाथ जोड़े हुए बैठे हुए पसीने पसीने, परंतु जो ओरिजिनल अर्जुन, जो क्षत्रिय अर्जुन, उसे भगवान याद दिला रहे हैं। तो हम महाभारत से देखते हैं कि ये जो परंतप अर्जुन, परंतप पार्थ हैं, इन्हें परंतप ये ख्याति शत्रुओं को तपाने वाली कैसे मिली। सबसे पहले महाभारत में बताया गया है कि अर्जुन की गांडीव की टंकार, टंकार समझते हैं आप लोग क्या हो? टंकार केवल बस वो केवल वो जैसे कई बार आप देखो कि कोई क्रिकेटर होता ना, वो बैटिंग करने से पहले सब कुछ अपना हिलाता है, ये सब बैट वैट यहां वहां ये सब ऐसे ऐसे। तो योद्धा भी युद्ध करने से पहले वो अपने धनुष चेक करता है कि सब प्रत्यंच बराबर चढ़ाई कि नहीं, उसका टेंशन बराबर है कि नहीं। तो अर्जुन सबसे पहले बस वो चेक करते थे कि बराबर उसका वो जो प्रत्यंचा है डोर की, धनुष की, वो बराबर है कि नहीं। उस आवाज से आधे तो उधर ही धराशायी हो जाते, वो टंकार की आवाज से वो बताया गया है मल मूत्र वहीं पे त्याग देते थे, बुलाना पड़ता जमादार वगैरह को तुरंत। अब तक तो बाण चलाए भी नहीं, केवल टंकार है। तो इसलिए उनको परंतप। फिर अर्जुन के अंदर ऐसी शक्ति थी बाण चलाने की कि कब अर्जुन अपनी तुणीर से बाण निकालकर उसका संधान करते और कब बाण छूटता, ये एक एक्ट को कोई देख नहीं पाता था, कितना फास्ट अर्जुन करते थे। यहां से निकालकर यहां पर चढ़ाकर संधान करकर उसे छोड़ना, अर्थात बाणों की वर्षा होती थी, वर्षा। जैसे बादलों से जब वर्षा होती तो हम देखते ये बादल से ही आ रहा है बूम, कोई बोल सकता है ये देखा देखा यार, कोई बता सकता है कि कौन सी बूंद कौन से बादल से कहां से आई, कितने ऊपर से? वैसे उसी प्रकार से अर्जुन के बाणों की वर्षा होती थी। इसलिए परंतप उनको कहा है। और अंतरिक्ष, ऐसा नहीं कि केवल बस जहां पर युद्ध चल रहा है, पूरे अंतरिक्ष एवं सारी दिशाएं ढक जाती थी अर्जुन के बाणों से। अंतरिक्ष, ये शब्द सुना आपने, अंतरिक्ष पूरा स्पेस, सब कुछ ढक जाता, अंधेरा छा जाता था, सूर्य की रोशनी तक नहीं आ पाती थी। ऐसा लगता था हो गया सनसेट। ये परंतप अर्जुन के गुण थे। रणभूमि पर गीता सुनने के पश्चात जब अर्जुन युद्ध प्रारंभ किए तो, और ये कोई काव्यात्मक दृष्टिकोण से नहीं बताया गया है, रक्त की नदियां ऐसे बहती, रक्त की नदियां, नदियां बहती रक्त की, और उसमें कटे हुए सर, कटे हुए भुजाएं, ये सब कुछ, इन सब का वर्णन है। महाभारत में सब स्पेशल इफेक्ट है, कोई पिक्चर देखने की जरूरत नहीं यहां वहां की। किसे यदि ये इस प्रकार का भयावह रस चखना है तो महाभारत में वो भी है। रक्त की नदियां, सोचिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखिए, रणभूमि पर दिखता था जैसे सूखे पत्ते, हवा आने से, वड़वानल आने से सूखे पत्ते कैसे उड़ते, तो उस प्रकार से अर्जुन जहां पर युद्ध करते थे वहां पर रथ, ध्वजा, घोड़े, हाथी, जगह नहीं था इसलिए हमने टाइप नहीं कर पाए, हाथ थोड़ा बड़ा भी होता है, तो ये सब, और उसके साथ वो जो रथ पे आरूढ़ है वो रथी, वो जो सारथी, वो सब ऐसे उड़ते फिरते अर्जुन के बाणों की शक्ति। इसलिए भगवान हमें, हम क्यों ये सब इतना एक एक पॉइंट कर चर्चा कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए कि ये एक शब्द परंतप, अर्जुन को जो पुकारा है परंतप, ये क्यों अर्जुन को परंतप पुकारा है। नहीं तो हमारे मन में केवल वही बस बैठे हुए कायर से अर्जुन, मन में वही आएगा, नहीं। जैसे कई बार होता है ना, हम जब किसी के गुण को जान लेते हैं और वो कई बार बैठा रहता है, ये पता है कि कौन है, मालूम है क्या बैठा है, बेंच पे बैठा मालूम है कौन है, तो उसके गुण जानते हैं तब जाकर लगता है इतना बड़ा आदमी बेंच पे बैठा है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अर्जुन को ये परंतप, सबसे पहला जो अर्थ है परंतप का ये है। अब दूसरा अर्थ परंतप का हमने देखा, उत्कृष्ट तपस्या करने वाला। ये अर्जुन कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, हालांकि अर्जुन एक धनुर्धर थे और धनुर्धर होने के नाते अर्जुन को कोई तपस्या में कोई प्रशिक्षण नहीं मिला था ऐसे, परंतु वर्णन आता है, सबसे पहला वर्णन है कि अर्जुन शिवजी से पशुपात अस्त्र लेने गए। शिवजी का कौन सा अस्त्र है आप जानते हैं? पशुपात अस्त्र शिवजी का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, जो प्रलय के समय शिवजी बाहर निकालते हैं। प्रलय, पूरी सृष्टि की, सृष्टि का जो प्रलय होता है उसके समय वो अस्त्र बाहर निकाला जाता। अर्जुन ने वो जीता शिवजी से। और कैसे? अर्जुन जब उनका वनवास चल रहा था तो काम्य वन में सारे पांडव थे, तो अर्जुन वहां से निकले हिमालय की ओर। काम्य वन आप जानते हैं कहां? ब्रजमंडल में है, यूपी राजस्थान बॉर्डर पर। तो वहां से अर्जुन गए हिमालय, हिमालय को लांघा, हिमालय को लांघ कर अर्जुन एक ऐसे जंगल में पहुंचे, पूरा कांटों से भरा हुआ ऐसा जंगल, जहां पर बड़े बड़े दिग्गज ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे सदियों से। अर्जुन वहां पहुंचे और अर्जुन ने केवल 4 महीना तपस्या की। ऐसी तपस्या, ऐसी कठोर तपस्या अर्जुन ने की केवल 4 महीना की, सारे वहां के बड़े बड़े तपस्वी, उस जंगल के बड़े बड़े तपस्वी, उनकी तपस्या फीकी पड़ गई अर्जुन की तपस्या के सामने, और वो तपने लगे। अर्जुन की तपस्या से जो ऊर्जा निकल रही थी उसके वजह से तप रहे थे सारे ऋषि, तपस्वी तप रहे थे। तो ये सारे तपस्वी गए शिवजी के पास और कहे कि ये कौन है, ये हमको इसने मात दे दी। तो शिवजी जानते थे, तो शिवजी आए और शिवजी ने फिर प्रसन्न होकर शिवजी ने अपना पशुपात अस्त्र अर्जुन को भेंट के रूप में दिया। तो अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर अर्जुन को यह अस्त्र मिला। उसके पश्चात अब शिवजी ने दे दिया तो बाकी सब देवता वो अब आना ही है उनको, तो शिव जी तो महादेव हैं। तो यमराज ने अपना यमदंड दे दिया। सोचो यमदंड, इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है, इससे बड़ा शस्त्र इस संसार में क्या हो सकता है, सबके ऊपर उन्हीं का दंड चल रहा है, यमदंड। यमदंड दे दिया अर्जुन को। यहां पर आप केवल देखिए कि अर्जुन के क्या क्या सर्टिफिकेट, लोग अपना फाइल बनाते हैं सर्टिफिकेट का, ये टैलेंट में वो उसमें मेरे को ये डिग्री मिली, ये सर्टिफिकेट, यहां पे देखिए। और फिर लोग अपना मेडल वेडल ट्रॉफी दिखाते हैं, ये देखिए अर्जुन की ट्रॉफियां, देखिए पशुपात अस्त्र शिव जी से। तो यदि आप अर्जुन के शेल्फ में देखो कि कौन सी ट्रॉफी कौन सा मेडल ये सब है, सोचिए किसी के घर में यमदंड यमराज जी लाके यमदंड दिए, ऐसे इस्तेमाल करो जब भी करना है। तो यमराज जी ने यमदंड दे दिया। वरुण देव ने वरुण पाश, हम सब तो जानते भी नहीं क्या क्या है ये वरुण पाश, ये वरुण देव ने दे दिया। कुबेर ने उनका सबसे प्रमुख प्रसिद्ध अस्त्र अंतर्धान अस्त्र, जिससे व्यक्ति अंतर्धान हो सकता है। इंद्र स्वयं उन्होंने अपना वज्र, जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र इंद्र इनका है, उन्होंने अपना वज्र अर्जुन को दे दिया। और अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर अर्जुन को सारे देवताओं ने उसी शरीर में स्वर्ग की यात्रा करने के लिए बुलाया। तपस्या के पश्चात जो अर्जुन की पिकनिक कहां मनाई, स्वर्ग में। हम लोग तो यहां वहां कोई जाता है स्विट्जरलैंड, कोई जाता है ये लैंड वो लैंड इंग्लैंड, यहां पर अर्जुन अपनी तपस्या के पश्चात, लोग वीकेंड में क्या पहले 5 दिन तपस्या करते हैं फिर वीकेंड में पिकनिक जाते हैं, तो अर्जुन के वीकेंड कहां में बनाते थे वो, सशरीर, ऐसा नहीं। और स्वर्ग में कोई इस भौतिक शरीर से नहीं जा सकता, वहां जाना है तो मरना होगा पहले, तब उसे अलग शरीर मिलता है, स्वर्ग में जाने के लिए अलग से शरीर मिलता है। परंतु अर्जुन ने ऐसी तपस्या दिखाई अपनी, ऐसे परंतप अर्जुन की सशरीर अर्जुन वहां, इसलिए जब अर्जुन को सशरीर स्वर्ग में देखा सभी स्वर्गवासियों ने, अर्थात स्वर्ग के वासियों ने, तो जब उन्होंने अर्जुन को सशरीर देखा तो सभी ये कैसे आ गया ऐसे, हमको तो ऐसे एंट्री मिलती नहीं, इसको कैसे एंट्री मिली, तो अर्जुन है ये, इसको विशेष पास मिला है, विशेष लाइसेंस अर्जुन को, सशरीर जा सकता है कहीं पर भी। तो ये किसकी वजह से, तपस्या के वजह से, अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर। और विशेष रूप से स्वर्ग में तो उनकी तपस्या परखी भी गई उर्वशी, और तब जाकर सबको समझ में आ गया कि हाँ ये ही काबिल है सशरीर यहां आने के, जो उर्वशी से प्रभावित भी नहीं हुए, इतने भी प्रभावित नहीं हुए, वो तो यही काबिल है और यही इस भौतिक संसार में धर्म की स्थापना कर पाएंगे। तो भगवान ये परंतप बोलकर अर्जुन को ये सब याद दिला रहे, अर्जुन तुम्हें ये सब सर्टिफिकेट मिला है, निकालो फाइल देखो। और सभी इसी आशा से, तुमको इसी आशा से सभी देख रहे हैं कि अरे तुम कम से कम तुम एक सेंचुरी तो मारो, ऐसे तुम पहली बॉल में आउट हो रहे। तो इसलिए भगवान अर्जुन को परंतप बुलाए। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक में हमें ये समझ में आ रहा है कि भगवद गीता की गहराई कितनी है। देखिए भगवान एक श्लोक में कितने अलग अलग दृष्टिकोण से हमें अर्जुन के द्वारा सिखा रहे हैं कि हमारा कर्तव्य, हमें धर्म की स्थापना, अर्थात हमारे जीवन में धर्म की स्थापना, इस संसार में धर्म की स्थापना वो अर्जुन जैसे ही कर सकते हैं। हमें क्या सीखना है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में धर्म की स्थापना हम कैसे करें, ये भगवान इस अब भगवद गीता का जो शुरुआत भगवान किए हैं इसके द्वारा हमें सिखा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न, कोई शंकाएं, टीका टिप्पणी? हाँ, वो उदारता कैसी है मैं बताता हूं आपको। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, फिर आप बताइए कि ये उदारता है कि क्या है। एक पुलिस इंस्पेक्टर है और पुलिस इंस्पेक्टर के सामने 10 खूंखार आतंकवादी जिन्होंने मासूम जानों को लिया है, तो पुलिस इंस्पेक्टर यदि उन्हें छोड़ दे कि नहीं नहीं क्यों इनको, मैं इनके ऊपर मेरी मैं कृपा भावना मैं दिखाऊं इनके ऊपर, तो हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से हां वो एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के ऊपर उदारता दिखा रहा है, छोड़कर जाओ मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं तुम्हें तुम्हें कुछ बोलूंगा मैं नहीं, कुछ मारूंगा मैं नहीं, जाओ। तो यदि कोई जानता नहीं कि वो आतंकवादियों ने किया क्या है तो उसे लगेगा हाँ वो बहुत उदार है ये व्यक्ति, और कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि इसका कर्तव्य क्या है। दोनों वो पुलिस इंस्पेक्टर सिविल ड्रेस में है और ये आतंकवादी खैर वो तो है ही जो भी, तो कोई यदि ये नहीं जानता कि ये पुलिस इंस्पेक्टर है इसका क्या कर्तव्य होना चाहिए और ये क्या कर रहा है, तो वो कहेगा कि हां ये उदारता है। परंतु यदि उसके अपराध जान ले और इसका कर्तव्य जान ले तो वो नहीं कहेगा कि उदारता, वो कहेगा कायरता, वो उनसे ज्यादा इनको गाली देगा, तू पुलिस इंस्पेक्टर को गाली देगा। तो हां वो बाहरी दृष्टिकोण से अर्जुन की उदारता दिख रही है, परंतु भगवान क्या देख रहे हैं कि ये दुर्योधन जैसे अधर्मियों ने क्या कुकर्म किए हैं, और तुम्हारा कर्तव्य तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो, तुम एक क्षत्रिय हो, क्षति त्रायते इति क्षत्रिय, क्षत्रिय का अर्थ वो है जो क्षति को कम करे, तो अर्जुन का कर्तव्य वो नहीं निभा रहा, इसलिए भगवान उसे कह रहे हैं क्लैब्यम कायर। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा। तो आने वाले शनिवार को हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसका हमने नाम रखा है परिवर्तन सेमिनार। तो इस समय इस बार का जो परिवर्तन है आने वाले शनिवार को शाम को 28 तारीख को, तो उसका जो विषय है आप अगर आप देखेंगे बाहर के नोटिस बोर्ड पे, बीइंग ग्रेटफुल टू ग्रेटफुल, यानी मूर्ख बनने से अच्छा अगर हम कृतज्ञ बनेंगे तो हमारे जीवन में काफी परिवर्तन होगा। और अगर जो भी अभी बंबई गए होंगे जहाँ पे अभी महासत्संग हुआ तो उसका पूरा जो प्रवचन का विषय था वो कृतज्ञता था कि कैसे केवल कृतज्ञता हमारे भक्ति में प्राप्त करने से हम भक्ति की जितनी भी यश या जो भी कुछ सक्सेस है भक्ति में उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें इन्वाइट करेंगे जो कभी एक प्रोग्राम के लिए आए हैं या जो जप कर रहे कुछ दो चार माला और जो भी 16 राउंडर्स है तो उनको काफी इसमें मदद मिल सकती है और भक्ति में प्रगति का अच्छा एक लाभ मिल सकता है। तो हम सबको निवेदन करते हैं कि अपने अपने काउंसिलर से मिलके या हमारे जो धनंजय प्रभु है उनको मिलके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं और उसके पासिस ले सकते हैं। और जो भी भक्त इस कार्यक्रम में पहली बार उपस्थित हुए हैं उनको हम निवेदन करते हैं 2 मिनट के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाइए, पहली बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आप आपका कीमती समय निकाल के यहाँ पे इस प्रवचन में बुधवार की गीतामृत सत्संग में आए, तो हम सब भक्त वैष्णव पद्धति से इनका तीन बार हरि बोल बोल के स्वागत करना चाहेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अपने जगह पे बैठ जाइए। और जो भी पहली बार इस कार्यक्रम में आए हैं, जो भी प्रभु जी से ये प्रवचन और कीर्तन के बाद मुझे आके बाहर मिल सकते हैं, ताकि हमारे जो भी इस्कॉन के और कार्यक्रम है और जो भी कुछ हमारा कार्यकलाप होता है उसकी जानकारी मिल सके। और जो भी माता जी से, यहाँ पे अंतरंगा शक्ति माता जी है हमारी, उनको आप मिल के उनसे आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
जय सुषृणीताय गौरचंद्र की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राम हरे राम राम राम
प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदी महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते।